धौला पुस्तक दसवीं लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवै समुत्तिन्नये जिनेणमिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का ये चौथा खंड, इसका नाम है वेदना खंड, और उसमें अपना वेदना अनुयोग द्वार चल रहा है। इस दसवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 99 पर हम आ गए। 99। देखो, ये हमारी बात गुणित कर्मांशिक की चल रही है, क्योंकि ये यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था ना कि किसके ये ज्यादा होता है द्रव्य, वेदना यानी वो कर्म परमाणु किसके अधिक होते हैं, उसकी बात अपनी चल रही थी। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी कंडीशन डाली थी के, देखो पेज नंबर 31 से बात चालू, 31, क्योंकि बहुत अभी लंबा अपना 10-12 दिन का खंड हुआ ना। 31 पृष्ठ पर स्वामित्व की, उत्कृष्ट पद का स्वामित्व की बात चल रही थी। ये पद यानी किसकी बात है, वेदना का द्रव्य प्रमाण यानी परमाणुओं की संख्या, कर्म परमाणुओं की संख्या, वो भी ज्ञानावरण की बात चल रही थी। तो ये ज्ञानावरण की वेदना द्रव्य से उत्कृष्ट किसके होती है, उसको गुणित कर्मांशिक जीव कहते। तो 32 पेज पर ये बताया था कि जो जीव बादर पृथ्वी कायिक जीवों में कुछ अधिक 2000 सागरोपम से कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट कर्म स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, माइनस साधिक 2000 सागर, इतने काल तक बादर पृथ्वी कायिकों में रहा। फिर वो उसमें अधिक योग के लिए वो जो सारे 6 आवास बताते ना, पर्याप्तों के बहुत ज्यादा किए, अपर्याप्तों के कम किए, वो बहुत बार वो उत्कृष्ट योग धारण किया, जब जब आयु बांधी तब जघन्य योग से बांधी, वगैरह वगैरह, वो सारे कंडीशंस हमने देख लिए थे। उसके बाद ये तो एक कंडीशन हुई, उसके बाद वो त्रस में उत्पन्न हुआ। त्रस में उत्पन्न हुआ तो वहां पर भी उसको कहा था बादर में उत्पन्न हुआ। ये बात यहां मैं बताती हूँ आपको, पेज नंबर है 50। कहां पर मिला आपको? नहीं, सातवीं नहीं, वो पहले में पहले त्रसों में उत्पन्न हुआ। 35 नहीं, वो त्रस की बात है, हम बाद नारकी के पहले ही वो, देखो त्रसों में उत्पन्न हुआ ना वो बात, नहीं नारकी में तो त्रस के अंत में, देखो पेज नंबर 46 पर है। इस प्रकार परिभ्रमण करके बादर त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, 14 नंबर का सूत्र। बादर पर्याप्त इसलिए कहा कि वो तो बिना मोड़ के आहार के साथ उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसको बादर कहा था। उसके बाद वो त्रस की स्थिति वैसे ही बहुत उत्कृष्ट योग, बहुत बार संकलेश परिणाम वगैरह वगैरह करके फिर नारकी में उत्पन्न हुआ। पेज नंबर 52 पर था, अंतिम भवग्रहण में सातवीं पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न हुआ। वहां पर भी बहुत बार वो नारकों में आया वगैरह वगैरह, वो सब कंडीशन उन्होंने बताई थी। वहां पर भी वो पर्याप्ति की बात वगैरह वगैरह वो बताई थी, बहुत संकलेश परिणाम हुए। इनके पश्चात वो योगों की बात चालू हुई यहां से, तो उसके लिए 57 पेज पर ये बताया कि इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग योमध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक रहा। तो यहाँ योग योमध्य समझाने के लिए वो काल योमध्य और जीव योमध्य की बात उन्होंने उठाई थी। यहाँ जो योग योमध्य कहा वो काल योमध्य ने 8 समय वाले है तो कम स्थान है, फिर वो 7 समय वाले उससे असंख्यात गुने, 6 समय वाले उससे असंख्यात गुने, इस तरह ऊपर और नीचे की उसकी बात उन्होंने बताई थी। उसके बाद उसकी सब प्ररूपना उन्होंने बताई थी योग योमध्य की, और उसमें कितने कितने जीव क्या होता है उस सब स्थानों की भी चर्चा की थी। उसके बाद जीव योमध्य की बात बताई थी कि जीव योमध्य क्यों नहीं, ऐसा उन्होंने प्रश्न था, काल योमध्य क्यों लिया, तो जीव योमध्य क्या होता है वो सब उन्होंने बताया था। उसके पश्चात अभी अपना जो विषय यहाँ का है, तो वहां उन्होंने कहा कि आउली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक अंतिम जीव गुणहानि में पाया जाता है, वो बात उनमें बताती है उसका सूत्र। हाँ, कौन सा पेज मिला? 90। हाँ हाँ, वही मैं पीछे देख रही थी। अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यात विभाग काल तक, ये तो पहले में पहले वो काल एवं मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त तक रहा, फिर वो अंतिम जीव गुणहानि स्थान, ये इसके भी हमने जीव गुणहानि स्थान भी देखे थे, उसका एवं मध्य कैसा होता है, बीच में 128 जीव देखे ने, और फिर ऊपर और नीचे कम होते वो भी देखे थे। तो जो अंतिम जो गुणहानि है जीवों की अपेक्षा से, उसमें आवली का असंख्यात विभाग काल तक रहा था, उसके ऊपर ये प्रश्न पूछा था, वहां अंतर्मूत काल ही क्यों रहता है, अधिक क्यों नहीं रहता, ये उनका प्रश्न था। तो उसके लिए जो उन्होंने समाधान, वो हम फिर दोबारा पढ़ते 99 पेज का। अभी हम तो हमारा विषय तो नीचे के पैराग्राफ से शुरू होता है, फिर भी हम ऊपर का पैराग्राफ पढ़ेंगे। वहां क्या प्रश्न पूछा, अंतिम जीव दुगुण वृद्धि, दुगुण वृद्धि कहो गुणहानि कहो एक ही बात है, तो अंतिम जीव गुणहानि में अंतर्मूर्त काल तक क्यों नहीं रहा, आवली के असंख्यात विभाग काल तक ही क्यों रहा, अधिक क्यों नहीं रहा, ये प्रश्न था। उसके लिए समाधान कहते हैं, नहीं, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती। यदि कहा जाए असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि के बिना भी अंतर्मूर्त काल तक रहता है, सो भी बात नहीं है। यानी कौन सी वृद्धि में कितने काल तक अधिक से अधिक, देखो काल का अर्थ क्या होता है, एक समय में मान लेते असंख्यात भाग वृद्धि हुई, दूसरे समय में उतनी वृद्धि, तीसरे समय में उतनी वृद्धि, तो उस ऐसा तो अंतर्मूर्त कर सकता है, परंतु असंख्यात गुणावृद्धि असंख्यात गुणावृद्धि असंख्यात गुणावृद्धि, इस तरह से वहां जो जीव गुणहानि में अंतर्मूर्त तक नहीं रह सकता, वहां वो हानि वृद्धि पा ही नहीं जाती, ये कहना चाहते। देखो फिर कहती हूँ मैं, सेकंड लाइन से फिर पढ़ती हूँ। यदि कहा जाए असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि के बिना भी अंतर्मूर्त काल तक रहता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का तथा इन्हीं तीन हानियों का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, ऐसा वचन है। पर अंतिम जीव दुगुण वृद्धि में यानी गुणहानि में असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि, ये दो ही है, शेष वृद्धि हानियां वहां नहीं होती, इसलिए वहां अवली के असंख्यात पे भाग काल तक ही रहता है, ऐसा निश्चय करना। यानी वहां असंख्यात गुणा वृद्धि नहीं होती है, ये बात बताना चाहते हैं। एकमात्र असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि, ये दो ही वृद्धि हानि पाई जाती है, ये उनका कहना है, इसलिए वहां अधिक काल तक नहीं रह सकता। अभी इसको ही समझाने के लिए अभी आगे का सब प्रश्न और उत्तर आएगा। देखो वहाँ असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है, अन्य वृद्धि हानियाँ नहीं होती, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। देखो यहाँ जो जीव गुणहानि की बात हम देखे थे तो उसमें जीवों के प्रमाण की अपेक्षा वो यव मध्य रचना की थी, और उसमें जो हमने क्या देखा था, पहले सारे ही द्वीन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग से लेकर संगी पंचेन्द्रिय के उत्कृष्ट योग तक पूरे एक लाइन में लिखेंगे हम, तो उसमें द्वीन्द्रिय का जो जघन्य योग है उससे दूसरा स्थान जो है थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक करते 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 संगी पंचेन्द्रियों का जो उत्कृष्ट योग है वो असंख्यात गुणा है। तो इस योगों में कितनी वृद्धि होती है वो जीव गुणहानि में हमको बताते। तो कहते वो जो अंतिम जो जीव गुणहानि में उसमें वो असंख्यात गुणा वाली वृद्धि के स्थान नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो क्यों नहीं है वो अभी बताएंगे। समाधान, यह बात युक्ति से जानी जाती है। यथा द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर, यानी वो जो उपपाद योग जुदे है एकांत वृद्धि के जुदे है, परंतु यहाँ केवल परिणाम योग स्थानों की हम एक लाइन में एक कतार में नीचे से ऊपर तक लिखेंगे तो उसको कहेंगे ये योग स्थानों की प्ररूपना है। तो उसमें एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान कुछ अधिक योग वाला है, फिर कुछ अधिक है, कुछ अधिक है, कुछ अधिक है, यही कहते हैं। द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से, यानी जो दूसरा योग स्थान है उसमें थोड़ा योग ज्यादा होगा, जितना अधिक का प्रमाण है उसको हम कहेंगे एक प्रक्षेप। तो एक एक प्रक्षेप के अधिक के क्रम से योगस्थान एक प्रक्षेप कम दुगने योगस्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी जो पहला योगस्थान है वो दो गुना होता है, तो उसमें क्या होता मान लेते ना, पहला योगस्थान में जितना एक्स योग है वो दो एक्स तक बढ़ते जाएंगे, तो हर बार उसमें थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक बढ़ाएंगे। मान लेता है 16 का 32 हुआ और हर बार दो दो से बढ़े, तो कितने बार बढ़ना चाहिए, 16 में और दो वृद्धि दो वृद्धि दो वृद्धि बढ़ते बढ़ते 32 तक पढ़े। तो यहाँ क्या कहा, एक प्रक्षेप कम दुगने योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चल, उसमें प्रक्षेप कितने पड़ेंगे, मूल अगर लेते तो 15 बार वृद्धि हो जाएगी ना, जैसे हम कहते ना कोई एक संख्या है उसमें 8 बार वृद्धि होकर वो दुगुना हुआ, जिसे हम दुगुने गुणहानि में देखते थे, तो उसमें प्रक्षेप हम चय कहते हैं। तो चय कितने बार बढ़ता है, एक कम गच्छ प्रमाण बढ़ता है, यही कह रहे कि एक प्रक्षेप कम दुगुने योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी जो पहला जो योग स्थान है जघन्य योग स्थान, उसमें जितना योग है उसमें दो गुना योग हो जाने तक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ केवल योगों की बात है, यहाँ वो जीव गुणहानि या काल योग मध्य उसकी रचना नहीं देख रहे हम, केवल योगों में जो जघन्य से उत्कृष्ट तक जो योग है, योग का प्रमाण उसकी बात है यहाँ पर। तो योग का प्रमाण थोड़ा बढ़ता थोड़ा 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 अधिक होते 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 तो दो गुना होगा। उसके आगे देखो, पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि हो जाती है। अभी क्या कहना है, तो बढ़ते 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 दो गुना हुआ, फिर उसमें एक एक प्रक्षेप बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो नीचे जितने स्थान जाने पर दो गुना वृद्धि होती है उससे डबल स्थान जाने पर वहां दुगुनी वृद्धि हो जाएगी, उससे डबल स्थान जाने पर वहां दुगुनी वृद्धि। प्रक्षेप तो उतना का उतना है, इसको थोड़ा हम संदृष्टि बनानी चाहिए, अभी पता नहीं कैसे होगी, कोई दूसरी संख्या लेकर उसको हम अगर बढ़ते हैं। जैसे हमने ओरिजिनल वैल्यू उसकी 4 देखी और दो दो से बढ़ते हुए 8 हो गए, तो 4 में से फिर 6 हुए, नहीं 3, एक एक से बढ़ाएंगे हम यहाँ पर, 4 से 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए और 8 हुए, फिर उसके आगे 8 का 16 होना चाहिए और प्रक्षेप उतना ही है, तो क्या होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएगी। यानी इसमें स्थान कितने हुए? दुगुने हो गए। ख्याल में आई ना बात? एक एक की वृद्धि, वृद्धि उतनी ही रही परंतु दोस्त यानी डबल स्थान जाने पर वो दुगुनी होती है। यानी 4 से 8 होने के लिए यहाँ बीच में 4 स्थान गए परंतु 8 से 16 होने के लिए बीच में इतने अधिक स्थान हो गए, 8 स्थान चले जाएंगे। ये उसका अर्थ है। इस प्रकार दुगुने दुगुने स्थान जाकर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है। यानी हमने मान लेते ना, 1 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से ये 2 से 4 हुए या 1 से 2 हुए, इस तरह से हम अगर देखते चले जाएंगे तो उसके डबल 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 स्थान चले जाएंगे। तो यहाँ जो इसे यहाँ वाला 16 है, उसके पश्चात वाला 17 वाला 18 वाला ऐसा होगा, वो 16 का 32 होने के वाले और 16 स्थान आगे जाने पड़ेंगे। तो यहाँ 16 ये दुगुण वृद्धि हुई, उसके पश्चात वाला जो 17 वाला स्थान है उसको इमेजिन करके कहते हैं। तो अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है। अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर और उसे द्विगुणित कर जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है, उससे द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागहार को गुणित करने पर अंतिम योग संबंधी दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। यहाँ ये कहना चाहते हैं, प्रक्षेप का प्रमाण वही है परंतु प्रक्षेप भागहार किसको कहेंगे हम? वहां जो योग है उसको कौन सी संख्या से भाग देने पर वो प्रक्षेप भागहार आया, यानी प्रक्षेप का संख्या निकालने के लिए कौन सी संख्या से भाग देंगे हम, उसको प्रक्षेप भागहार कहेंगे। तो यहाँ का प्रक्षेप भागहार निकालने के लिए नीचे की जितनी गुणहानियां बीत गई है उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालो और उससे यहाँ लिखा ना, फिर एक पहली लाइन में लास्ट में पढ़ती हूँ। अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की यानी अंतिम गुणहानि के नीचे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर, जितनी गुणहानियां नीचे बीत गई है उसको गुणित कर, नहीं उसको विरलन, अभी हमने देखा ना 4 से 8 हुआ और 8 से 16 हुआ। मान लेते हैं अभी हमारी 4 से 8 ये पहली गुणहानि हुई, 8 से 16 दूसरी गुणहानि हुई, तो उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि होगी 2 × 2 = 4। उसे द्विगुणित कर अन्योन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है, उससे द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग संबंधी प्रक्षेप भागहार को गुणित करने पर अंतिम योग संबंधी दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। यानी 4 वाला जो यहाँ का योग स्थान था, हमने देखा था अपने संदृष्टि में, उसका जो योग भागहार था उससे 4 गुना यहाँ का प्रक्षेप भागहार होगा। देखो अपने संदृष्टि में अगर समझना है, यह हमारा योग 4 था और हमारा प्रक्षेप है योग 1, तो यहाँ 4 को 4 से भाग देने पर 1 आया था। यहाँ का भी प्रक्षेप 1 ही है, यहाँ 16 को 16 के लिए 4 × 16 को 16 से भाग देने पर 1 आया था, तो उसको प्रक्षेप भागहार कहा। उसका विरलन कर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान को समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। यानी जो प्रक्षेप भागहार है उसका विरलन करना है और उसमें उस योग स्थान को समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। अभी यहाँ अपनी तो संदृष्टि अलग है क्योंकि हमने एक ही माना है ना, इसका विरलन तो नहीं कर सकते हैं। या प्रक्षेप भागहार हमने माना था ना, प्रक्षेप भागहार हमने 4 माना था। देखो इसका अर्थ समझते हैं, हमने वो यहाँ का योग 4 माना था और प्रक्षेप भागहार हमारा 4 था और 4 को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक एक आया, तो हमारा प्रक्षेप एक आया। अब यहाँ अंतिम जो है, यहाँ 16 थे, यहाँ का प्रक्षेप भागार भी 16 था, तो वो 16 को एक एक करके विरलन करके उसमें 16 दे देंगे, तो वहां कर भी एक एक आएगा। ये कहना चाहते उनमें से एक प्रक्षेप उसके ऊपर बढ़ाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है, क्योंकि जो यहाँ का जघन्य योग स्थान है, कहीं पर भी योग असंख्यात में होता है, अनंत में नहीं होता, और प्रक्षेप का प्रमाण उसका असंख्यात में भाग प्रमाण है। इसलिए दूसरा एक स्थान से दूसरा स्थान असंख्यात व भाग अधिक है, तीसरा स्थान उससे असंख्यात व भाग अधिक है। हाँ, उनमें से एक प्रक्षेप उसके ऊपर बढ़ाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर द्वितीय प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर तब तक जाती है जब तक इसमें प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक कम खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जावे। यानी एक एक प्रक्षेप करते 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 हम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण उसमें, अगर उसमें एक कम इतने हमने प्रक्षेप मिलाए, पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। जैसे हमने देखा ना, संख्यात भाग वृद्धि ने, देखो हमें 16 में एक एक बढ़ाया, तो एक एक बढ़ाया वो उसका असंख्यात भाग बढ़ते बढ़ते गया, एक 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 बढ़ते भी 8 बढ़े, तो 8 ये क्या है, 16 का संख्यात भाग है, आधा है ना, तो संख्यात भाग है, तो हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि हुई वहां पर। जितना योग आधा बढ़ा तो हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान हो जाएगा। तत्पश्चात उसके ऊपर अन्य एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस प्रकार 2, 3, 4 आदि एक कम प्रक्षेप भागहार प्रमाण प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। पुनः अंतिम प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर दुगुण वृद्धि होती। जैसे हमने देखा ना, 16 में एक एक बढ़ाए तो 8 बढ़े, तो हमने संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान होगा, 9, 10 वो सभी संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, 16 में 16 बढ़े तो 2 गुना हुआ ना, तो संख्यात गुणा वृद्धि वहां से शुरू हो गई। ये कहना चाहते हैं इस प्रकार अंतिम गुणहानी में 3 ही वृद्धियां होती है। कौन सी? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। क्योंकि हमने 16 का 32 हो जाएगा ना, वो तो संख्यात गुणा वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ योगों की अपेक्षा गुणहानि गुण वृद्धि की बात चल रही, जिसको हम गुणहानि कहते हैं वो दुगुण वृद्धि के स्थान है। यानी 16 का 32 होने तक, 16 में 17 हुआ तो असंख्यात भाग वृद्धि, फिर 16 में एक एक बढ़ते हुए 8 बढ़े तो संख्यात भाग वृद्धि हो गई, और फिर 9 बढ़े 10 बढ़े संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, जब 32 हो गए तो क्या हो गया, संख्यात गुणा वृद्धि हो गई। इसलिए एक गुणहानि में वो संख्यात गुणा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अंतिम गुणहानि में 3 ही वृद्धियां होती हैं। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। क्योंकि एक गुणहानि में असंख्यात गुण वृद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि 16 का 32 ही हो सकता है ना, उसको असंख्यात गुणा तो एक गुणहानि, यानी जो योगों की अपेक्षा जो गुणहानि है उसमें असंख्यात गुण वृद्धि एक गुणहानि में नहीं हो सकती। ये कहना चाहते हैं, ये अंतिम जो गुणहानि है ना, योगस्थान की अंतिम गुणहानि, क्योंकि ये गुणहानि शब्द 3 बार आया है। ये जीव गुणहानि भी आया है और वो काल की अपेक्षा भी उसमें भी कुछ बातें आई थी, उसमें गुणहानि शब्द नहीं आया था, अपन जीव में गुणहानि शब्द आया था, 128 के हमने उसके आधे हुए, उससे आधे हुए, उससे आधे हुए, वो जीव गुणहानि थी। और यहाँ ये योगों के जो एक लाइन में हमने एक कतार में लिखे है, नीचे से ऊपर तक बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जिसको दुगुनी वृद्धि कहेंगे, उसी को गुणहानि का नाम दिया है। तो उसमें एक किसी गुणहानि में मैक्सिमम 2 गुनी वृद्धि हो सकती है ना, उससे अधिक नहीं हो सकती एक ही गुणहानि में, ये कहना चाहते। अब पूर्व भाग हार के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर जो योग स्थान हो उसको आधार करके वृद्धि का विचार करते हैं। यानी क्या कहा, अभी हमने 16 की अपेक्षा ऊपर उसकी बात की थी। अब जो उत्कृष्ट यानी जो प्रक्षेप मिलाते 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 यहाँ क्या कहा देखो, पूर्व भागहार के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर जो योग स्थान हो उसको आधार करके वृद्धि का विचार करते। ये हमने पहले वृद्धि का विचार किसके अपेक्षा कहा, 16 में एक बड़ा, दो बड़े, तीन बड़े। अभी कहते 16 में मान लेते चार बड़े हो तो 20 हो गए, तो उसकी अपेक्षा से आगे के उसकी अपेक्षा से कथन करेंगे। तो उसमें एक बड़ा तो कितना हुआ, उसमें दो बड़े तो कितना, ये कहना चाहते हैं। या 16 में 8 मिलाए, 24 हुए, 24 की अपेक्षा कितने बढ़ सकते हैं, तो 24 मैक्सिमम एक गुनाने में 24 का 32 हो जाएगा, तो उसकी अपेक्षा से कितना बढ़ सकता है। ये इस तरह से अलग अलग पॉसिबिलिटी को अभी यहाँ कहने वाले हैं। यथा अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को, अभी हमारा 16 को हमने प्रक्षेप भागहार हमारा 16 था, तभी एक प्रक्षेप की वैल्यू एक आई थी, तो उसका आधा करना यानी 8। अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर उनमें से एक खंड का उसी में प्रक्षेप करने पर विवक्षित योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। इस प्रक्षेप भागहार का विरलन कर, अभी वहां का हमने देखा ना प्रक्षेप तो उतना ही के उतना आना था, तो 20 के आगे हम सोचना था, तो 20 को 20 से भाग देंगे हम। अभी वो बात छोड़ो उत्कृष्ट वगैरह संख्यात वगैरह, हमें तो प्रक्षेप हमारा एक का एक है, तो 20 को 20 से भाग देंगे तो हमारा एक आ जाएगा उत्तर। इनमें से एक प्रक्षेप को विवक्षित योग स्थान में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है, यानी विवक्षित योग स्थान हमारा 20 वाला है, उसका योग 20 था, उसमें एक मिलाया तो 20 की अपेक्षा एक क्या है, उसका असंख्यात भाग है, तो असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ के प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उसमें एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर जाती है। अभी इसमें हमने छोटी संख्या ली है, उसमें असंख्यात और संख्यात समझाना जरा कठिन है, फिर भी हम कहेंगे ना वो असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि हो जाती है। पुनः एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। अब हम 20 की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि कब कहेंगे हम, जब उसमें 10 मिल जाएंगे, 20 के 30 हो जाएंगे तो संख्यात भाग वृद्धि हो गई। पुनः एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। पूर्वोक्त असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान से यह असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान विशेष अधिक है, वो कितना अधिक है। इति अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से खंडित करने पर उनमें से एक खंड मात्र अधिक है। इस प्रकार यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होकर संख्यात भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक कि एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र शेष खंड सब नहीं प्रविष्ट हो जाते, तब दुगुण वृद्धि होती है, परंतु यहाँ दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती। अभी हमने जो संदृष्टि बनाई वो बराबर है, 16 की अपेक्षा हमने बात की थी तो एक एक बढ़ते हुए पहले असंख्यात भाग वृद्धि हुई, जब 8 बढ़े तो संख्यात भाग वृद्धि हुई, जब 32 हुए तो संख्यात गुना वृद्धि हुई। अब हमने किस अपेक्षा से हम बात करेंगे, 20 की अपेक्षा से बात करेंगे। 20 में एक एक बढ़ते हैं तो असंख्यात भाग वृद्धि हुई, 20 में 10 बढ़े तो 20 के 30 हुए, तो 30 हुए तो क्या कहेंगे, उसके संख्यात भाग वृद्धि हुई। पर हमारा ये तो गुणहानि जो है वो 32 में कंप्लीट होती है, तो उसमें 20 में 10 बढ़े तो संख्यात भाग वृद्धि, 20 में 11 बढ़े तो संख्यात भाग वृद्धि, तो वो 32 हो गया, स्थान हो गया, तो इसमें संख्यात भाग वृद्धि ही होगी। संख्यात गुना वृद्धि यानी 20 के 40 होना का यहाँ चांस नहीं है, क्योंकि हमने ओरिजिनल जो 16 का 32 होता है, पर 20 का 32 होने तक ही यहाँ वृद्धि हो सकती है, 20 का 40 होने के लिए यहाँ जगह नहीं है। ख्याल में आती है बात, वो दूसरे गुणहानि में, हम अंतिम गुणहानि की बात कर रहे हैं। तो अंतिम गुणहानि में किसी बीच वाला स्थान डबल भी नहीं हो सकता, जिस स्थान की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं उस स्थान के यानी वो 16 के कंपेरिजन में वो 3 वृद्धियां 3 हानियां होती है, परंतु अगर 20 के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि होगी। इसलिए इस पैराग्राफ 101 पेज पर पहले पैराग्राफ में लास्ट में दो लाइन पढ़ती हूँ, परंतु यहाँ दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती क्योंकि अभी अंतिम दो खंड मात्र प्रक्षेपों का प्रवेश नहीं हुआ है। उन्होंने तो वो उत्कृष्ट संख्यात वगैरह आदि लिए, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी हमको ये समझ में आता है कि 20 का 40 तो नहीं हो सकता, तो संख्यात गुणा नहीं हो सकता। अथवा अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर उनमें से एक खंड अधिक योगस्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपना इस प्रकार करनी चाहिए। जैसे हमने 16 का हमने 20 देखा था, अभी 16 का उसमें 8 मिलाकर 24 है, 24 की अपेक्षा से अगर हम बात करेंगे, यथा एक अधिक उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड कर देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर एक खंड प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि अर्ध योग की अपेक्षा यह एक खंड अधिक देखा जाता है। देखो यहाँ पर भी प्रक्षेप तो वही प्रमाण है, अभी हम 24 की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो 24 को 24 से भाग देने पर एक आता है यहाँ पर, तो उसमें एक मिला है तो असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि होगी। तो 24 में संख्यात भाग वृद्धि कब कही जाएगी, उसमें 12 मिलेंगे तब, अब वो संभावना तो यहाँ नहीं है, 24 में 8 ही मिल सकते हैं, यानी उसका संख्यात्व असंख्यात्व भाग ही कहेंगे उसको। देखो पुनः इसके नीचे अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके, देखो देखो पहला नहीं, एक अधिक उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर एक खंड प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि अर्ध योग की अपेक्षा यह एक खंड अधिक देखा जाता है। यानी वहां तो हमने देखा था ना, 16 में 8 मिलाने पर वो 24 हुए थे, तभी यहां अभी ये पूरी संदृष्टि तो नहीं बनाई मैंने, और पुनः इसके नीचे अर्ध प्रक्षेप भागार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके एक खंड को विरलित कर ऊपरी विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समग्र, जैसे हमने पहले आपको याद होगा दो दो विरलन किए थे, ऊपर का एक विरलन करना उसमें से एक लेकर नीचे विरलन करना, तो यहाँ हमें तो प्रक्षेप का प्रमाण हमको एक निकालना है, तो ऊपर का विरलन किया फिर उसी में से एक लेकर नीचे का, क्योंकि हमने उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण यहाँ नक्की नहीं किया था, मान लेते उसको 4 लिया हमने, एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है, उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर, यानी अभी हमने एक लिया, वो विवक्षित योग को प्राप्त, हमने विवक्षित योग हमने 24 मान लिया था, प्रति राशि करके मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि रूप योग स्थान होता है, यानी 20 का हमने कितना 24 माना था, उसका 25 हुआ तो असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। द्वितीय प्रक्षेप को ग्रहण करके प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान को प्रति राशि कर मिलाने पर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है, यानी वो 24 का 25 हुआ तो भी असंख्यात भाग वृद्धि, 26 हुआ तो भी असंख्यात भाग वृद्धि। इस प्रकार परिपाटी से सब विरलन मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी हमने देखा है ना 24 की अपेक्षा से बात करते हैं तो उसका संख्यात भाग वृद्धि भी नहीं होगी, वहां असंख्यात भाग वृद्धि ही कहलाई उसके लिए। पुनः द्वितीय खंड को ग्रहण कर अधस्तन विरलना के समखंड करके देने पर पूर्व के समान प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। प्रक्षेप तो उतना का उतना ही है, अब हम जिस स्थान को देख रहे जिस अपेक्षा से उसको उतना भागहार बढ़ाकर उसको भाग देंगे तो वहां प्रक्षेप का प्रमाण आ जाएगा। अभी हमने एक ही माना है इसलिए हमने उसी संख्या का भाग दिया, परंतु जहां प्रक्षेप का प्रमाण अलग है जुदा है वहां वो भागहार भी अलग अलग हो जाएगा। अब इस विरलना के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करके उनमें एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप जब तक प्रविष्ट होते हैं तब तक असंख्यात भाग वृद्धि होती है। क्या कहना चाहते हैं? जो हमने अगर उत्कृष्ट संख्यात खंड करेंगे और सारे के सारे मिलाएंगे उसमें तो संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। उत्कृष्ट संख्यात से भाग देने पर उतने प्रक्षेप मिले ना, तो संख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी उसकी। परंतु उसके एक कम पहले तक क्या होगा? असंख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। अब इस नहीं, दो लाइन पढ़ रही हूँ नीचे के पैराग्राफ की। अभी नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रही हूँ। पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है, क्योंकि विवक्षित योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर, जैसे हमने विवक्षित योग मान लिया 24 जो कुछ है, उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर, अभी हमने उत्कृष्ट संख्यात और असंख्यात की संदृष्टि नहीं बनाई है, तो अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर एक खंड का, तथा उसको ही उसके वर्ग से खंडित करने पर एक खंड का आना नहीं पाया जाता। यानी हमें यही कहना है, यहाँ संख्यात भाग वृद्धि नहीं होती, असंख्यात भाग वृद्धि होती है। जिस योगस्थान की अपेक्षा बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक एक प्रक्षेप बढ़ते हुए, क्योंकि अभी संख्यात भाग वृद्धि होने इतने उसके ऊपर स्थान नहीं है। जैसे हमने 24 की अपेक्षा बात की, या ऊपर और 28 की अपेक्षा बात करेंगे, तो असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि होगी वो 32 तक पहुंचेगा, तो उसमें संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी, संख्यात गुणा वृद्धि नहीं होगी, अन्य तो पॉसिबल ही नहीं। सेकंड लाइन 103 पेज। अथवा उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति उसका संख्यात्वा भाग प्राप्त होता है। देखो यहाँ दो विरलन कैसे करना, मुझे जरा कुछ इसकी बात ख्याल में आ रही है। हमने मान लिए ना, कोई भी हमने पहले 16 वगैरह 4, 8, 16 ऐसी संख्या ली थी, परंतु ये बहुत बड़ी संख्या लेकर फिर उसमें उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण नक्की करना पड़ेगा। परंतु हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, अगर 24 लिया और उत्कृष्ट संख्यात हमने 8 मान लिया, तो पहले इसको उत्कृष्ट संख्यात से भाग देना, 8 + 3 = 24 हो गए, यहाँ का विरलन 3 हुआ, उसमें हमने वो 24 बार दिए तो 8, 8, 8 हुए। फिर नीचे दूसरा विरलन करना है और उसमें 8 को बटर देना है, ये इसकी विधि है। हमें प्रक्षेप कितना चाहिए? एक चाहिए, तो नीचे 8 का विरलन कर दो, उसमें 8 बिखेर दो, तो एक 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 हमारा प्रत्येक प्रक्षेप आ जाएगा, ये यहाँ कहना चाहते हैं। फिर पढ़ती हूँ मैं सेकंड लाइन। अथवा उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति उसका संख्यात्वा भाग प्राप्त होता है। जैसे हमने देखा था ना, उत्कृष्ट संख्यात मान लेते हम 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आया, और एक 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 विरलन किया तो ये 8 जो है वो इसका संख्यात्वा भाग है। हाँ, या 8 का विरलन करना है ना, 8 उत्कृष्ट संख्यात है, 8 बार अगर उसको करेंगे 24 बांटेंगे तो हर एक के प्रति 3-3 आ जाएंगे, वो उसका संख्यात्वा भाग कहलाएगा। 8वां भाग है ना संख्यात्वा भाग, क्योंकि 8 ये उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण है। और नीचे विवक्षित योग संबंधी प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड का विरलन कर उपरिम विरलन के एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी हमारी संदृष्टि तो उसमें फिट नहीं बैठेगी, परंतु क्या करना है बस इतना ही ले लेना। उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर प्रतिराशिभूत विवक्षित योग में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। जैसे हमने प्रक्षेप एक हमने 24 में मिलाया तो असंख्यात भाग वृद्धि हुई, क्योंकि उसके आगे संख्यात भाग वृद्धि होने इतने स्थान नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इस प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि होकर तब तक जाती है जब तक कि एक कम अधस्तन विरल मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जावे, पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। क्योंकि देखो जैसे हमने यहाँ मान लिया है कि उसमें एक 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 प्रक्षेप मिलाया 24 में, तो 24 में एक 25 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, तो असंख्यात भाग वृद्धि होते होते फिर संख्यात भाग वृद्धि हो गई उसके अंदर, क्योंकि पूर्व भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड से पूर्व भागहार की अपेक्षा यह भागहार अधिक पाया जाता है। अंतिम गुणहानि स्थान के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से जो अंतिम गुणहानि है, योग की जो अंतिम गुणहानि है उसमें उत्कृष्ट संख्यात अगर हम खंड करेंगे, उनमें से एक एक खंड के प्रति प्रथम योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा करते समय इसी प्रकार तीन तरह प्ररूपणा करना चाहिए। यानी अंतिम गुणहानि में से जो पहला स्थान था, जैसे हमने 16 के ऊपर अगर देखना है तो 17 है, नंबर 18 है, 19 है, एक एक स्थान की अपेक्षा अगर हम कहेंगे तो उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है, यानी विवक्षित योग स्थान की अपेक्षा वृद्धि और हानि का प्रमाण बताना है। 17 की अपेक्षा वृद्धि कितनी हो सकती है, बीच में जाके हमने देखा 20 की अपेक्षा वृद्धि कितनी हो सकती है, 24 की अपेक्षा कितनी वृद्धि हो सकती है, ऐसे अलग अलग विवक्षित स्थान की अपेक्षा यह कौन सी वृद्धि पॉसिबल है ये बात बता रहे हैं। तो कहते तीन तरह की प्ररूपणा होती है, यानी अंतिम योग की अपेक्षा जो हमने सारे गुण वृद्धि वैसे दुगुण वृद्धि दुगुण वृद्धि उसको गुणहानि भी कहते हैं, तो अंतिम जो दुगुण वृद्धि वाली बात है यानी अंतिम गुणहानि वाली बात है उसमें योग थोड़ा अधिक, क्योंकि प्रक्षेप तो उतना का उतना है, तो हम उसको वहाँ उसके अंतिम गुणहानि में बहुत सारे योग स्थान है, उसके पहले योग स्थान की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो वृद्धि कितनी हो सकती है, तो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि। उसके और थोड़े ऊपर चले जाओ, उस योग स्थान की अपेक्षा कौन सी वृद्धि हो सकती है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। और ऊपर चले जाओ तो केवल असंख्यात भाग वृद्धि के ही स्थान हो गए, तो उसमें तीन प्रकार की वृद्धि हो सकती है। कौन से स्थान पर है वो जी, उसकी अपेक्षा से वहां कौन सी वृद्धि हो सकती है ये बात बता रहे। विशेष इतना है कि खंड करते समय इसी प्रकार तीन तरह नहीं खंड करते सॉरी नीचे ऊपर हो गया पढ़ते समय फिर पढ़ती हूँ। विशेष इतना है कि खंड खंड के प्रति एक खंड के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करके उनमें एक खंड से लेकर उत्तर क्रम से जाकर द्वितीय खंड के भीतर संख्यात भाग वृद्धि होती है। यानी हम कितने खंड करते हैं उसमें विरलन करके और उसमें से एक एक प्रक्षेप बढ़ाने पर वो संख्यात भाग वृद्धि कब होगी उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। द्वितीय प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का भागहार एकादि एकोत्तर क्रम से एक आदि एकोत्तर यानी एक एक से बढ़ते हुए क्रम से प्रत्येक खंड के प्रति बढ़ाना चाहिए। द्वितीय खंड के रहते हुए दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि उत्कृष्ट योग से ऊपर दोनों खंडों का अभाव है। तृतीय खंड के रहते हुए भी दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि उसके ऊपर चार खंडों का अभाव है। इसी प्रकार खंड खंड के प्रति उत्तरोत्तर दो दो खंडों के अभाव का हेतु कहना चाहिए, अथवा द्विगुणित अधस्तन खंडशला का प्रमाण खंडों के द्वारा इसका कथन करना चाहिए। क्योंकि एक तो अधस्तन खंडशला का प्रमाण खंडों का भागहार के ऊपर अधिक्य पाया जाता है और दूसरे अधस्तन खंड की शलाकाओं से कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों का ही ऊपर प्रवेश देखा जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ संदृष्टि बनाई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब अंतिम खंड के जघन्य योग स्थान को विवक्षित करके वृद्धि की प्ररूपणा करते हैं। उस समय प्ररूपणा करते समय एक कम दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर पूर्व खंडों के सदृश खंड होकर स्थित होते हैं। और पूर्वोक्त एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागहार का विरलन कर उपरिम विरलन के एक खंड को ग्रहण कर समखंड करके देने पर प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। प्रक्षेप तो वही का वही है, परंतु उसका प्रमाण अलग अलग पद्धति से लिखना है। कौन से योग स्थान के कंपेयर करने में उसको लेना है, तो पहले उसके उतने खंड करेंगे, फिर उसमें जो समखंड करके देंगे उसमें से वो एक समखंड को लेंगे और नीचे उस प्रक्षेप भागहार में देंगे। तो इस तरह से प्रक्षेप का प्रमाण तो उतना का उतना आने वाला है, परंतु किसी पर्टिकुलर योग स्थान की अपेक्षा से उसका ये प्रोसेस है कैसा निकालना। उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग स्थान को प्रतिराशि करके, यानी जिस योग स्थान की बात कर रहे हैं उसमें हमको मिलाना। जैसे हमने देखा ना, कोई योग स्थान 17 वाला था, कोई 20 वाला था, कोई 24 वाला था, तो वो प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग स्थान में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। उसको प्रतिराशि कर, अभी जहां वो वृद्धि वाली जो राशि है उसको अगर अभी हम प्रतिराशि, जैसे 24 का 25 हुआ, अब उसको प्रतिराशि करके द्वितीय प्रक्षेप को मिलाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस प्रकार तब तक असंख्यात भाग वृद्धि होती जाती है, होती शब्द डालो, जब तक विरलन मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट नहीं हो जाते, यानी सारे प्रक्षेप उसमें प्रविष्ट होने तक उसमें एक 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 बढ़ते, जैसे 24 का 25 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, वो तो यहाँ एक असंख्यात भाग वृद्धि ही है, क्योंकि ऊपर योग स्थान का अभाव है। अंतिम योग की बात चल रही थी ना, हाँ, तो हमने असंख्यात भाग वृद्धि होती क्योंकि हमने पर्टिकुलर हमारा जो योग स्थान है वो लास्ट लास्ट वाला लिया है, तो उसमें संख्यात भाग वृद्धि होने की भी संभावना नहीं है। इस अंतिम खंड को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर वहां एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों के जितने समय है उतने मात्र योग स्थान यदि ऊपर है तो संख्यात भाग वृद्धि हो सकती है। क्या कहते हैं, जो हमने उसके खंड किए ना, अलग अलग खंड कर दिए, जैसे योग स्थानों के खंड किए, तो कहते उसमें यदि वो उत्कृष्ट खंड उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर यदि उतने खंड यदि ऊपर होते और उसमें एक एक प्रक्षेप मिलाते तो संख्यात भाग वृद्धि हो सकती थी, परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि इतने वे नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रथम खंड में 3 वृद्धियां होती। ये खंड किसके किए हमने, पूरे अंतिम गुणाने के खंड किए। जैसे अंतिम गुणहानी हमने मान लिए ना, यहाँ तो हमने बहुत छोटी संख्या ली, हमने 16 से 32 तक तो अंतिम गुणहानी मान ली है, तो उस गुणहानी के हमने मान लेते ना 4 खंड किए, 8 खंड किए, तो उसमें शुरुआत वाले जो खंड थे, नीचे वाले खंड थे, उसमें 3 वृद्धियां होती थी। थोड़ा ऊपर गए तो उसमें तो 2 ही वृद्धियां होती थी, और अंतिम खंड में एक प्रकार की ही वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि वाली। इसलिए यहाँ क्या कहते, देखो तीसरी लाइन 105 पेज पर, इस प्रकार प्रथम खंड में 3 वृद्धियां होती है और अंतिम खंड में एक असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है, और शेष खंडों में असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, ये 2 ही वृद्धियां है। समझ में आई ना, जो सारे जो हमने योग स्थान नीचे से दुइंद्रिय से संगी तक लिखे थे उस योग स्थानों की अपेक्षा ये सब बात हो रही है। उसमें जो अंतिम गुणहानी है उसमें हमने कोई खंड कर दिए, तो शुरुआत के नीचे खंडों में 3 वृद्धियां, बीच में 2 वृद्धियां, फिर लास्ट में एक वृद्धि होती। योग स्थान की अंतिम गुनहानी में रहने का काल, पूरी अंतिम गुनहानी और योग स्थान की अंतिम गुनहानी बता रहे। वो जीव गुनहानी की बात अलग थी और यहाँ योग स्थानों की बात अलग है, और वो काल योग मध्य की बात तो और अलग थी। तो योग स्थान की अंतिम गुनहानी में रहने का काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है, यानी वो जो योग स्थान जो अलग अलग बताए है उसमें जो अंतिम गुनहानी है उसमें कोई जीव अगर रहता है, भले उसमें वृद्धि या हानि हुई तो भी आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल में ही वह वहां रह सकता है, फिर वो नीचे के योग स्थानों में आ जाएगा, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती। किसी भी पहले योग स्थान की अपेक्षा भी अगर देखेंगे, पहले खंड की अपेक्षा भी देखेंगे तो तीन ही वृद्धियां होती है, बीच वाले स्थानों की अपेक्षा दो ही वृद्धियां होती है और अंतिम खंड की अपेक्षा एक ही वृद्धि हानि होती है। इसलिए अंतिम गुणहानि में और उसमें रहने का काल भी आवली का असंख्यात्वा भाग है। जब योग स्थान की अंतिम गुणहानि में भी आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक ही रहता है तो इससे असंख्यात गुणीहीन अंतिम जीव गुणहानि में रहने का काल निश्चय से आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ऐसा ग्रहण। ये युक्ति क्यों दी उन्होंने पूरी? ये योग गुणहानि बताने का प्रयोजन क्या था? कि वहां ये उन्होंने बात बताई थी कि अंतिम जीव गुणहानि में वो आवली का असंख्यातवे भाग काल तक रहता है। कहते यहाँ तो अंतिम योग गुणहानि में भी आवली का असंख्यातवे भाग काल तक रहता है तो जीव गुणहानि तो उससे भी छोटी है। ख्याल में आती है ना बात? जिन योगों में जीव गुणहानि की अपेक्षा बात करें हम, जिसमें जीवों की संख्या इतनी कम होती है तो वो जीव गुणहानि में तो और कम काल रहेगा क्योंकि वो और छोटी है, ये यहाँ कहने का प्रयोजन है। फिर से पढ़ते देखो, जब योग स्थान की अंतिम गुणहानि में भी आवली के असंख्यात वे बाल काल तक ही रहता है तो इससे असंख्यात गुणहीन अंतिम जीव गुणहानि में रहने का काल निश्चित ही क्या होगा? आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण ही है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न ये वहां आवली का असंख्यात विभाग क्यों लिया था? तो उसके लिए उन्होंने योग की भी अंतिम गुणहानि बताई और उसके साथ जीव की अंतिम गुणहानि को कंपेयर कर दिया। अब शंका पूछते हैं कि शंकाकार ये पूछता है योगस्थान की जो अंतिम गुणहानि है उससे जीव की जो अंतिम गुणहानि है वो उसकी छोटी है या असंख्यात विभाग प्रमाण, ये कैसे जाना? देखो शंका क्या है, योग स्थान की अंतिम गुणहानि के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव गुणहानि होती है यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, यह बात आगम के अनुकूल युक्ति से जानी जाती है। युक्ति कहो तर्क कहो वो भी आगम के अनुकूल होना चाहिए। वो बता रहे यथा यदि जीव गुणहानि अंतिम योग गुणहानि को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण होती है तो क्या कहते हैं? अभी इमेजिन कर रहे हैं, वो तो कहते हैं वो तो ओरिजिनल में कितने है तो उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण है, पर यदि वो उत्कृष्ट संख्यात वे भाग प्रमाण होती तो, प्रश्न समझ में है ना? तो कहते हैं यदि जीव गुणहानि, ये जीव गुणहानि एक अलग बात है और योग गुणहानि अलग बात है। योग गुणहानि ने योग जघन्य से उत्कृष्ट बढ़ता 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 दुगुना दुगुना होता चला जाता है और असंख्यात गुना हो जाता है, तो जो अंतिम दुगुना गुणहानि उसको योग दुगुनी हानि युक्ति कहते हैं। और यहाँ जीव गुणहानि की बात अलग है, हमने देखे थे ना 128 से वो नीचे 16 तक और ऊपर हमने देखा था 5 तक पहुंचे, नीचे 3 गुणहानियां ऊपर 5 गुणहानियां थी ना, दो तो समय वाले थे वो काल यो मध्य था, जीव यो मध्य की अपेक्षा 128 और नीचे फिर आधा आधा होते होते 16 तक पहुंचे थे और ऊपर 5 तक पहुंचे थे, है ना? वो जीव गुनाहानी है, यानी 8 के बाद 7, 6, 5 वगैरह जो 8, 7, 6, 5 वो अंतिम जीव गुनाहानी थी, उसकी कंपैरिजन अभी योग गुनाहानी के साथ कर रहे हैं। देखो, यदि जीव गुणानि अंतिम योग गुणानि को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण होती है तो सब जीव दुगुणहानि शलाका है, जिसको हम नाना गुणहानि कहते हैं। दुगुणे उत्कृष्ट संख्या प्रमाण ही होगी। यानी जो एक जीव गुणहानि अंतिम योग गुणहानि को उत्कृष्ट संख्या से खंड करने पर एक खंड प्रमाण होती तो सब जीव की जो सभी नाना गुणहानि शलाका है दुगुणे उत्कृष्ट संख्या प्रमाण ही होगी, क्योंकि समस्त योगस्थान अध्वान के, समस्त योगस्थान अध्वान ने द्विंद्रिय के योग से लेकर पंचेंद्रिय संगी का योग साधिक अर्ध भाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। अब ये क्या कहना चाहते हैं? अब इसके लिए मुझे दूसरा तो कुछ नहीं सूझता है, मैं अपना द्वीप और सागरों का उदाहरण दूंगी। मैं तो जैसे द्वीप और सागर दुगुने दुगुने है ना, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, 4 लाख योजन, 8 लाख योजन, 16 लाख योजन, दुगुने दुगुने दुगुने। अंतिम जो दुगुना वाला है स्वयं ब्रह्मण समुद्र, वो दुगुना होता होता कितना है? तो सभी पूर्व के सभी को इक्वल यानी उसको मिला दो, उसमें भी थोड़ा अधिक हो जाता है अंतिम। ये तो मालूम है ना, पूरे सभी असंख्य, एक स्वयं ब्रह्मण समुद्र अकेला छोड़ो और बाकी सबको मिलाकर जितना होता है उससे भी ज्यादा होता है। वो यही कह रहे हैं, समस्त योग अध्वान के साधिक अर्धभाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। यानी अंतिम योग दुगुण वृद्धि कितनी होगी? तो सभी योगस्थानों के अर्ध प्रमाण में तो देखो योग 2 गुना हो रहा है, योग 4 गुना हो रहा है, योग 8 गुना हो रहा है, योग इस तरह 16 गुना, 32 गुना, ऐसे करते करते हम लास्ट में पहुंचे। तो अंतिम जो गुणहानि वाला जो योग स्थानों की संख्या होगी वो मोर देन आधी हो जाती है। ये समुद्रों के एग्जाम्पल से समझना आसान है। देखो, समस्त योग अध्वान के साधिक अर्ध भाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। यानी यह हमने योग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरह से हमने देखा है। हाँ, यानी देखो ना, यहाँ का योग हमने मान लिया ना, हमने ओरिजिनल योग 4 था, फिर ये 8 था, ये 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, योग 2 गुना 2 गुना हुआ। परंतु तो कितने स्थान जाने पर वो दुगुने हुए? क्योंकि हमने ये मान लेते ये 4 स्थान पर जाने पर दुगुने हुए, 8 स्थान जाने पर दुगुने हुए, तो 16 स्थान पर जाने, इस तरह से वो स्थान भी दुगुने दुगुने होते हैं। इतने स्थान जाने पर वो दुगुण वृद्धि, योग में दुगुण वृद्धि इतने स्थान जाने पर होती है। इसलिए यहाँ अंतिम कितने स्थान जाने पर, तो मोर देन आधे स्थान जाने पर वो अंतिम जो गुणहानि है या वृद्धि इसको हम कहेंगे, उसमें मोर देन आधे योग स्थान उसमें चले जाते हैं। उसको अंतिम दुगुण वृद्धि का स्थान कहेंगे। फिर से 106 नंबर, देखो, समस्त योग स्थान अध्वान के साधिक अर्ध भाग में अंतिम 2 गुणी युद्धि का अवस्थान है। यदि एक खंड में 2-2 जीव गुणहानियां पाई जाती है तो सब जीव गुणहानियां 4 गुणे उत्कृष्ट संख्या प्रमाण होती है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अंतिम योग दुगुणहानि युद्धि हमने देखी ना, मोर देन आधी होती है। यानी सब टोटल योग स्थान, आपको याद है पहले हमने टोटल योग स्थान 32 माने थे, टोटल योग स्थान। अभी 1 से लेकर 32वां नंबर तक ये योग स्थान है, तो उसमें से 16 से भी ज्यादा योग स्थान है वो योग की अपेक्षा दुगुण वृद्धि वाले स्थान हो गए, उसके अंतिम गुणहानि होगी और उसके हमें खंड करना है। देखो अभी हमने देखा था ना, योग 16 से 32 होता है, ये हमने मान लिया था अंतिम गुणहानि में, यानी पहला स्थान 17 वाला है और लास्ट स्थान उसका 32 वाला है। अगर उसके हम खंड करते हैं, मान लेते उसके हमने 8 खंड किए, उत्कृष्ट संख्या हमने 8 मान लिया और 8 खंड कर दिए, तो 8 खंड में प्रत्येक में 2-2 है ना, उत्कृष्ट संख्या अगर हम मान लेते 8 और एक खंड में अगर दो जीव गुणानियां मानते हैं तो 16 हो जाएगी। देखो देखो, हाँ, एक खंड में दो दो जीव गुणानियां पाई जाती है तो सब जीव गुणानियां चौगुने उत्कृष्ट संख्या प्रमाण होती है। अथवा यदि एक खंड में तीन तीन जीव गुण, यानी सारी बात है, देखो अंतिम अंतिम गुणहानी में तो 8 × 2 = 16 हो जाएंगे, परंतु टोटल कितने हैं? डबल है ना। टोटल जो टोटल योग स्थान कितने हैं? देखो अंतिम योग स्थान में कितने स्थान है, अंतिम योग स्थान में स्थान कितने हैं तो 16 है मान लेते हैं, और टोटल स्थान कितने? 32 है, क्योंकि अंतिम गुणहानी में योग की अपेक्षा अंतिम गुणहानी में मोर देन डबल होते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि द्वीप और समुद्रों के हम देखते हैं कितने उसका योजन विस्तार, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो अंतिम जो है उसका विस्तार कितना है? मोर देन हाफ। स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार पहले के सारों से थोड़ा ज्यादा है, यानी वो आधे से ज्यादा है। हम आधा आधा भी समझते, बाकी सबसे दो गुना है ना, तो टोटल कितने हुए स्थान? तो उसका जो प्रमाण है उससे दुगुने हुए। तो अभी हमने देखे थे अंतिम गुणहानि हम 17 से लेकर 32 तक मान लेते हैं, यानी उससे इतने स्थान है, तो इतने स्थानों में हो गए उसके सभी टोटल कितने हो गए? उससे डबल हो जाएंगे। यहां कहते हैं 17 से लेकर 32 तक प्रत्येक एक एक खंड में, हमने उसके खंड कितने के मान लेते हैं, उसके अंतिम गुणहानि 16 वाली है और उसके हमने 8 खंड किए तो एक एक में दो दो जीव गुणहानियां मान ली। हाँ, पेज नंबर 106 की बात है, मैं अपनी भाषा में जरा उसको बताना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है ना पहली लाइन में, समस्त योग स्थान अध्वान के साधिक अर्ध भाग में, समस्त योग स्थान का अध्वान यानी टोटल नंबर ऑफ योग स्थान हमने 32 मान लिए, मान लेते हैं 32 स्थान मानेंगे, तो उसके साधिक अर्ध भाग में यानी 16 से भी अधिक स्थान में योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है, अंतिम योग दुगुण वृद्धि यानी अंतिम गुणहानि उसकी आधे से ज्यादा स्थानों में है, ये कहना चाहते। अब कहते उसमें मान लेते ना 16 स्थान है, हमने एग्जैक्ट आधे मान लेते, बाकी सब मिलकर सभी नीचे की सभी गुणहानियों में मिलकर 16 स्थान है और अंतिम योग स्थान में भी 16 स्थान है। अब ये 16 स्थान के हम 8 खंड करेंगे और एक एक खंड में दो दो जीव गुणहानि मानेंगे, तो वो अंतिम 8 खंड में दो दो हो गए, यानी वहां 16 स्थानों में दो दो हो गए, तो टोटल उससे दो गुना हो जाएगी ना, यानी 8 खंडों में दो गुने यानी 16 हो जाएंगे, उत्कृष्ट से दो गुना और टोटल उससे दुगुना, यानी उत्कृष्ट संख्या से 4 गुना स्थान उसमें हो जाएंगे। यदि उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करते अंतिम गुणहानि के और एक एक खंड में दो जीव गुणहानियां मानते हैं तो टोटल कितने हो गए? उससे 4 गुना हो जाएंगे। ये ख्याल में आई? 2 से 2 गुना, क्योंकि नीचे के सारे स्थान और ऊपर के सब मिलाकर डबल हो जाते हैं। यही बात है, यदि एक खंड, ये हो गए ना, फिर से पढ़ती हूँ दूसरी लाइन, यदि एक खंड में दो दो जीव गुणहानियां पाई जाती है तो सब जीव गुणहानियां 4 गुने उत्कृष्ट संख्या प्रमाण होती है, क्योंकि हमने देखा 8 खंड किए और एक एक में दो दो है तो सभी नीचे और भी है ना, तो सभी 4 गुना हो जाती है। अथवा यदि एक खंड में तीन तीन जीव गुणहानियां पाई जाती है तो सब जीव गुणहानियां 6 गुने उत्कृष्ट संख्या प्रमाण होती है। ये समझ में आती है ना बात। अथवा यदि एक खंड में 4 जीव गुणहानियां पाई जाती है तो सब जीव गुणहानियां 8 गुने उत्कृष्ट संख्या प्रमाण होती है, परंतु ऐसा है नहीं। तो सब जीव गुणहानियां कितनी है? क्योंकि पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र जीव गुणहानियां होती है, ऐसा परम गुरु का उपदेश है। जीव गुणहानियां कितनी होती है? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण, यानी उसकी नाना गुणहानियों का प्रमाण। इसलिए एक खंड में, यानी हमने क्या देखा था, जितने हम उसके खंड करेंगे उसके 2 गुना प्रमाण होती है, तो इसलिए एक खंड में भी उस कितने खंड हो गए वहां, उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड नहीं हो गया, असंख्यात खंड हो गए, या एक एक खंड में असंख्यात जीव गुणहानियां होगी। इसलिए एक खंड में पल्लोकम के असंख्यात वे भाग मात्र जीव गुणानिया होना चाहिए। यथा दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंडों में यदि पल्लोकम के असंख्यात वे भाग मात्र जीव गुणानी शलाकाएं प्राप्त होती है तो एक खंड में कितनी प्राप्त होगी। इस प्रकार समान राशियों का अपनयन करके यानी उसको सॉल्व करके गणित को दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात का जीव गुणहानी शलाकाओं में भाग देने पर पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण एक खंडगत जीव दुगुणहानी शलाकाएं प्राप्त होती है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हमने जो अंतिम गुणहानी थे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हमने खंड किए थे और टोटल जो स्थान है योगों के वो उसे दुगुना होते हैं और वहां हमने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए थे और एक एक खंड में कितने कितने होते हैं, एक एक खंड में पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण जीव गुणहानियां तो टोटल कितने अधिक हो जाएगी उससे। इससे सिद्ध है कि अंतिम योग गुण वृद्धि के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव गुणहानी होती है। उनको क्या सिद्ध करना है, जीव गुणहानी का जो प्रमाण है जो टोटल जो अंतिम योग की गुणहानी है उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण उसका प्रमाण है, यानी उतने ही योग स्थान एक जीव गुणहानी में होते हैं, ये उनको कहना है। और वहां जीव अवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही रह सकता है, ये उसका दूसरा कथन है। यानी जब अंतिम योग गुणहानी में अवली का असंख्यात वे भाग प्रमाण रहता है तो अंतिम जीव गुणहानी में भी अवलिक के असंख्यात विभाग के भी असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक रहेगा, ये उन्होंने पूरा का पूरा सिद्ध कर दिया। अब आगे नानक भव का आश्रय कर कहे गए ये सब सूत्र गुणित कर्मांशिक के सब भवों में पृथक पृथक कहने चाहिए, क्योंकि ये सूत्र देशामर्शक देखे जाते हैं। जो जो नारक में जो कंडीशंस बताई बहुत बार वो उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ, संकलेश को प्राप्त हुआ, ऐसा सभी भवों में समझना चाहिए। यदि कहा जाए एक भव में यव मध्य के ऊपर और अंतिम गुणहानी में अंतर्मूर्त व आवली के असंख्यात वे भाग काल तक रहता है सो ऐसा भी नहीं है कि एक ही भव में ऐसा नहीं है, जब जब पॉसिबल है तब सब जगह ये समझना। यह दो बातें बताए ना, यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त तक और अंतिम गुणहानी में आवली के असंख्यात विभाग। यव मध्य की बात अलग है, वो काल यव मध्य देखा था और अंतिम गुणहानी जो है वो जीव गुणहानी अंतिम गुणहानी देखी। यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त यानी वो काल यव मध्य था और अंतिम गुणहानी वो जो अंतिम जीव गुणहानी थी। मैंने ये सब प्रूव करने के लिए उन्होंने इतनी सब विशेषताओं को उसके प्ररूपणा कर दी। अब 107 पेज पर नया सूत्र दुचरिम ती चरिम समये उक्कस संकिलेशम गदो, यानी वहां निकलने के पहले द्वितीय द्विचरम और तीचरम समय की बात है। चरम मैंने अंतिम, द्विचरम मैंने लास्ट बट वन, हाँ द्विचरम व त्रिचरम समयों में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ। शंका, द्विचरम व त्रिचरम समयों में उत्कृष्ट संकलेश को किसलिए प्राप्त कराया। उसका समाधान, बहुत द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए उन समयों में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त कराया गया है, क्योंकि हमने देखा था वो संकलेश है तो वहां पर स्थिति भी अधिक बंधेगी और उसके साथ कर्मों का उत्कर्षण भी होता है। और हमने देखा था वो तो जो प्रदेशों की रचना होती है उत्कृष्ट संकलेश में ऊपर अधिक चली जाती है, उत्कर्षण अधिक है अपकर्षण कम है। शंका, यदि ऐसा है तो उक्त दो समयों को छोड़कर बहुत समय तक निरंतर उत्कृष्ट संकलेश को क्यों नहीं प्राप्त कराया गया। यानी ये जो कौन सा परिणाम अधिक से अधिक कितने काल तक रहते हैं उसकी भी लिमिट है ना, तो मैक्सिमम जो संकलेश है वो अधिक से अधिक दो समय तक ही हो सकता है। समाधान, नहीं, क्योंकि इन दो समयों को छोड़कर निरंतर उत्कृष्ट संकलेश, निरंतर ने एक के बाद एक हो तो लगातार निरंतर लगातार निरंतर उत्कृष्ट संकलेश के साथ बहुत काल तक रहना संभव नहीं है। यह हमने वो तो अशुभ कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग की बात जब देखी थी उसमें भी ऐसी बात थी ना, वो अनुभाग दो समय तक उत्कृष्ट बन सकता है, उत्कृष्ट अनुभाग। शंकाकार कहता है इस सूत्र को नहीं कहना चाहिए क्योंकि सूत्र के अर्थ की प्ररूपना संकलेश आवास सूत्र से ही हो जाती है, क्योंकि पहले संकलेश छह आवास बताए थे, याद है ना, भवावास था, आयु का आवास था, संकलेश आवास था, उत्कर्षण उत्कर्षण आवास था, योगावास था, तो कहते कि वो उसमें पहले बता चुके थे, ये अलग से क्यों बता रहे हैं? अंतिम दो समयों में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ ये क्यों कहा? पहले तो ये बताया तो बहुत बार संकलेश को प्राप्त था, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि संकलेशावास सूत्र से, ये संकलेशावास पहले आई थी ना बात, देखो 50 नंबर पर था, चार माह है और हाँ और 50 नंबर पर भी आ गया है फिर, संकलेशावास 51 नंबर पर था, वहाँ उसका विशेष स्पष्टीकरण नहीं है पर प्रस्तावना के चार नंबर के पेज पर है। देखो बहुत बहुत बार ये बीच में है, वो चार नंबर के पेज पर इसे ब्रैकेट ब्रैकेट में जो आवासों के नाम लिखे संकलेश आवास लिखा, देखो बड़ा पैराग्राफ उसके सेंटर में राइट साइड से देखेंगे तो संकलेश आवास दिख रहा है, उसमें लिखा ना बहुत बहुत बार जो बहुत संकलेश को प्राप्त होते मंदने बहुत, यही बात यहाँ कहते हैं। अब समाधान फिर पढ़ती हूँ मैं 107 अंतिम लाइन, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि संकलेशावास सूत्र से जो नारक भव के अंतिम समय में उत्कृष्ट संकलेश का प्रसंग प्राप्त था उसका प्रतिषेध करना इस सूत्र का प्रयोजन है। क्या कहना चाहते हैं कि अंतिम समय को क्यों नहीं लिया, द्विचरम और त्रिचरम को क्यों लिया, अंतिम समय को लेना था ना, तो वही शंका पूछ रहे हैं। उत्कृष्ट संकलेश का नरक भोग के अंतिम समय में प्रतिषेध किस लिए किया जाता है? उसका समाधान, क्योंकि वहां अपकर्षण के होने पर भी द्रव्य का विनाश नहीं होता, चरम समय के पहले तो सर्वत्र यथा समय उत्कृष्ट संकलेश ही होता है, क्योंकि हमने देखा ना बहुत बार उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त किया अकेले द्विचरम त्रिचरम ने, यहाँ द्विचरम त्रिचरम में तो होता ही होता है, वो अंतिम समय में नहीं होता, बस इतना ही कहना था। तो कहते चरम समय के पहले तो सर्वत्र यथा समय यानी जब जब पॉसिबल है उत्कृष्ट संकलेश ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर संकलेशावास सूत्र के निष्फल होने का प्रसंग प्राप्त होता है। संकलेशावास में क्या बताया है, जब कभी पॉसिबल है उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ था। अब यहाँ द्विचरम और त्रिचरम की बात स्पेशली इसलिए कही कि अंतिम समय में नहीं होकर उसके पहले दो समय में होता है, यानी वहां निकलने के जस्ट पहले। अब 31 नंबर का सूत्र, चरिम दुचरिम समय उपकस जोगम गदो। देखो संकलेश द्विचरम और त्रिचरम में कहा और उत्कृष्ट योग अंतिम दो समयों में कहा, तो चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है। शंका, चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को किस लिए प्राप्त कराया, क्योंकि उसमें अधिक बड़ा समय प्रबद्ध ग्रहण करेंगे। समाधान, उत्कृष्ट योग से बहुत द्रव्य का संग्रह कराने के लिए उक्त समयों में उत्कृष्ट योग को प्राप्त कराया है। शंका, यदि ऐसा है तो दो समयों के सिवा निरंतर बहुत काल तक उत्कृष्ट योग से क्यों नहीं परमाया। यहाँ पर भी हमने देखा था ना, काल योग योग मंदिर में देखा था, दो समय तक ही वो उत्कृष्ट योग रह सकता है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरंतर उत्कृष्ट योग में तीन आदि समय तक परिणमन करते रहना संभव नहीं है। ऊपर के बहुत सारे योग स्थान जो हमने देखे थे, असंख्यात योग स्थान ऐसे, उसमें दो समयों से अधिक स्थान काल तक नहीं रह सकता। यहाँ तो मैक्सिमम योग ले रहे, वहां पर भी दो समय ही रह सकता है। शंका, इस सूत्र की रचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योगावास सूत्र से इस सूत्र के अर्थ का कथन हो जाता है। देखो, योगावास में ऐसा कहा था कि बहुत बार उत्कृष्ट योग को प्राप्त हो, और यहाँ अंतिम दो समयों में प्राप्त कराया है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल अंत समय में उसका घटित करना है, है ना। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संकलेश के समान उत्कृष्ट योग का कर्म स्थिति के भीतर प्रतिषेध नहीं है, यह बतलाना ही सूत्र का प्रयोजन है। यानी वो तो बहुत बार तो उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ ही हुआ था, अंतिम दो समयों में भी खास करके हुआ है, ये कहना है। नीचे सर्वत्र यथा समय उत्कृष्ट योग ही होता है, नीचे सर्वत्र नहीं, इसके पहले, क्योंकि ऐसा माने बिना योगावास सूत्र के निष्फल होने का प्रसंग आता है। यानी योगावास में तो बहुत बार उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ था, अब यहाँ तो ये कंडीशन खास बता रहे कि अंतिम दो चरम समयों में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ, और संकलेश अंतिम समय छोड़कर उसके दो पहले समय में। अब 32 नंबर का सूत्र, ये कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसका फिर अर्थ वगैरह नया यहाँ से शुरुआत होती है ना। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।